ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में कल दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आरंभ करने और पेशेवरों तथा कुशल श्रमिकों का आवागमन सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था पर बातचीत की घोषणा की। न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हो गया है। वह आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का सदस्य भी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत में भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने प्रेस वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने तथा संस्थागत बनाने और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कल नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2025 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। श्री लक्सन ने मुख्य भाषण में कहा कि आने वाले वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक विकास का 2/3 हिस्सा होगा और वर्ष 2030 तक दुनिया के 2/3 मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस क्षेत्र में होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड और भारत अपनी अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव की दहलीज पर हैं। उन्होंने कहा कि रायसीना डायलॉग दुनिया भर के विचारकों को हिंद महासागर में समकालीन रणनीतिक चुनौतियों पर अपने सामूहिक विचार को केंद्रित करने का वार्षिक अवसर प्रदान करने का मंच है। इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का विषय है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। इसमें लगभग 125 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि सामरिक सुरक्षा दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, सामरिक सहयोग और सूचना साझा करने में सहयोग के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। सुश्री तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत अपनी पारदर्शी नीतियों, जीवंत लोकतंत्र और दीर्घकालिक संबंधों के कारण यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों के लिए एक विश्वसनीय सहभागी है। कल नई दिल्ली में भारत यूरोप व्यापार आदान प्रदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि यह आदान प्रदान भारत और यूरोपीय संघ के बीच अधिक तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत विश्व में स्टार्टअप अर्थव्यवस्था का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें लगभग 1,50,000 स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने के कांग्रेस सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। कर्नाटक से पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इस कदम को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के विपरीत है। श्री सूर्या ने कहा कि भाजपा इसे अदालत में चुनौती देगी और इसका विरोध करेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कुल 29 लाख रूपये का इनाम घोषित था। इन सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत 25,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है। वहीं प्रदेश के कोंड गांव जिले में कल 1 लाख रूपये के इनामी माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में कल एक आतंकवादी मारा गया। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल बरामद की गई है। रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज होने वाली बातचीत की पुष्टि की है। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि बातचीत की तैयारी पूरी हो चुकी है। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने इटली को 64-22 से हरा दिया है। आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से और महिला टीम का सामना वेल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।